कविता बहन कह रहे थे कुछ क्वेश्चंस के लिए आएंगे। कितनी कन्याएं चाहती हम सेंटर पर रह के सेवा करें, हाथ तो खड़े करो, फिर क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? ओके, दिल्ली की कन्याएं हाथ खड़े करो, दिल्ली वाले खड़ी हो जाओ, दिल्ली की कुमारियां। अभी दिल्ली में कन्याओं की ट्रेनिंग हुई थी, आप लोगों को पता था ट्रेनिंग हुई है? नहीं पता था तो आप लोग आए नहीं उसमें। वो ट्रेनिंग करो, चाहे नेक्स्ट ईयर करो, लेकिन जरूर ORC में ट्रेनिंग रखी थी ना, अवश्य करने से फायदा है। बैठ जाओ।
पूछना भी चाहती है अमृत वेले उठना भी चाहती है, ये भी चाहते हैं नींद ना आए, लेकिन अमृत वेले आके बैठते हैं तो भी नींद आती है, मुरली में भी नींद आती है, क्या करें? हम छोटे हैं ना, नींद ज्यादा चाहिए हमको, और रात को लेट भी हो जाते हैं सोने में।
देखो, दो चीजें जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ जाएंगी और जितनी घटाना चाहो घट जाएंगी। वो दो चीजें हैं खाना और सोना। खाना आप जितना बढ़ाना चाहोगे ना बढ़ जाएगा, जितना घटाना चाहो घट जाएगा। ऐसे ही सोना, कितने घंटे सोना चाहिए? छह, चलो मैं आठ तक ले जाती हूँ।
ऐसा सुनने में आता है कि 27 साल के बाद, जो मेडिकल साइंस कहती है कि 27 साल के बाद 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है दिन में और रात को मिलाकर, और 18 साल 15 साल इसके बाद 27 साल तक 8 घंटा नींद चाहिए।
चलो फिर भी आप इनको भले 8 घंटे तक भी करो, 6 घंटे तक करो, 7 घंटे तक करो तो अच्छी बात है। और ये सब नींद की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप योग युक्त सोएंगे, अच्छी नींद आएगी, थोड़े से आप रिफ्रेश हो जाएंगे। और अगर योग युक्त नहीं होंगे तो बेशक 12 घंटे भी सोते रहो, लगेगा भी और नींद आ रही है। तो अपने आप को अलर्ट बनाओ, एक्टिव बनाओ। अमृत वेले ये सोचो, अब मानो आपको एयरपोर्ट जाना हो, आप उठोगे या नहीं उठोगे? मानो आपका प्रिय फ्रेंड आपको मिलने का वो टाइम देता है, क्या करोगे? उठोगे, जाओगे या नहीं जाओगे? तो बाबा ने अमृत वेला मेरा जो रखा है, ये फैमिली टाइम है। अगर मैं बाबा की फैमिली की हूं तो अमृत वेले बाबा के सामने उपस्थित होंगी। मेरा बाबा सारा दिन बहुत काम करता है, लेकिन सवेरे का टाइम बाबा कहता है मैं बच्चों के लिए रखता हूं, सवेरे ही मिलता हूं, तो बाबा के सामने उपस्थित होंगे ना। देखो, नींद आती है जब आप मन को खाली छोड़ देते हो, उसको बिजी करो। अभी तुमने ये काम करना है, अभी 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस करनी है, अभी तुमने मनसा दान देना है, अभी तुमने नशे में बैठना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ चेंज करो, बाबा से रूहान करो, सारी रिपोर्ट बाबा को दो, और आज के लिए नया बाबा मैं क्या करूं वो बाबा से पूछो। तो अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी। रात को 10 बजे सो जाओ, सो जाओ। 10 से पहले सोना चाहते हो 9:30 सो जाओ, लेकिन सवेरे उठने की कोशिश। कई कन्याएं जैसे कॉल सेंटर है या ऐसा वहां काम करती हैं, तो ऐसे में आप अपने आप से जबरदस्ती नहीं करो। रात को 12 बजे लौटो फिर 3:30 बजे उठ के बैठ जाओ, ऐसा काम नहीं करो। आप सो जाओ और जब आप उठो प्यार से बाबा को याद करो, ठीक है? और मुरली में नींद तब आती है जब इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने प्रिय फ्रेंड से बात करो फोन पर, नींद आएगी आपको? आप अमेरिका में हो, मम्मी का फोन आए, नींद आएगी? तो ये हमारे बाबा की चिट्ठी आई है हमारे लिए, उसको सुनते समय नींद क्यों? चेक कर, इंटरेस्ट रखो। इंटरेस्ट होगा तो मुरली आपको प्यारी लगेगी। मुरली जहां आपको ले चले चलो, परम धाम की यात्रा कराए परम धाम चलो, मुरली आपको वैकुंठ की यात्रा कराए वैकुंठ चलो, मुरली आपको और कहीं की यात्रा कराए वहां चलो। मन को बुद्धि को खाली नहीं छोड़ो।
जब तक दीदी लेटर पढ़ते हैं आपका, अनगिनत क्वेश्चन इसी बात के हैं। वो योग में भी लिखती रहती हैं, योग नहीं लगता है तो वो योग में भी लिखती हैं, खुद भी योग नहीं करते और मैं योग कर रही होती हूँ, मुझे भी नहीं करने देते। योग में भाग भाग के पर्ची, सिर्फ वो साधारण बातें जो कि क्लासेस में कई बार डिस्कस हो चुकी हैं, शायद सुनते नहीं है या क्या चक्कर है। एक ये नींद वाली बात, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, मार्गदर्शन कीजिए। अब 4 दिन से मार्गदर्शन ही तो कर रहे हैं और कैसा मार्गदर्शन करें? मैं अच्छा पुरुषार्थ करना चाहती हूँ, 3 दिन हो गए अच्छे पुरुषार्थ की विधि बता रहे हैं, उसके अलावा फिर पूछना, तो इसका मतलब क्लास अच्छी तरह सुनते नहीं है। सिर्फ कुछ लिख के देना है दीदी को, इसीलिए लिखते हैं। एक ही कागज में से 4-4 पर्चियां बनाते हैं और उसमें अलग अलग क्वेश्चन लिखते हैं, बस लिखना है कुछ, लिख के देना इसलिए ले आते हैं। और योग में बैठ के लिखते हैं, योग में ही पकड़ाने आ जाते हैं। लाल लाइट का महत्व नहीं मालूम शायद। कुछ बातें जेन्युइन है जो कईयों ने पूछी है कि कुछ कुमारियां सेंटर पर रहती हैं, कोर्स कराती हैं, तो वो कहती हैं कि जब भी सृष्टि चक्र शुरू हुआ होगा तो वो संगम युग से शुरू हुआ या सतयुग से शुरू हुआ। लोग पूछते हैं, हमें तो क्लियर है कि अनादि है, फिरता रहता है, कभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब भी शुरू हुआ होगा कभी तो हुआ होगा, तो वो कहां से शुरू हुआ?
ये क्वेश्चन भी अनादि है। कुछ भी को बाबा ने कोई ऐसा बताया तो नहीं है कि सतयुग से शुरू हुआ या संगम से हुआ। आप समझ लो सतयुग से हुआ, उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए सतयुग से शुरू।
कम से कम 50-60 पर्चियां इस बात की आई है कि कोई देहधारी में बुद्धि फंसी हुई है और अब निकालना चाहते हैं।
निकालना चाहते हैं?
हाँ जी। अब तो निकाल दो।
हाँ, आपकी बुद्धि फंसी है, आपने फंसाई, आप ही निकालो। फंसा हुआ आप, निकालने की विधि हम बताएं।
जो कभी फंसे ही नहीं।
खुद ही फंसे हो, खुद ही निकलो। बाबा कहता है छोड़ो तो छूटो, वो पंछी की तरह बोल रहे हो, हम फंसे, निकालो निकालो निकालो। बाबा कहते उड़ो तो उड़ो, क्यों फंसे हो? दाल को छोड़ो तो उड़ो, दाल को पकड़ के बैठो और कहो मैं उड़ू, ये नहीं होता, छोड़ो तो उड़ो।
बस मोबाइल बंद करना है, फोन करना सुनना बंद करना है, और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इतनी सेंसिटिव हूँ कि कोई भी आत्मा दुखी होती है, किसी पर कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं रोने लग जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ
किसी के ऊपर भी।
हाँ, पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, कोई किसी पर परिस्थिति आए, वो दुखी है, मैं रोने लग जाती हूँ उसको देखकर। तो अपनी सेंसिटिव नेचर को कैसे ठीक करूँ?
बहुत कमजोर आत्मा है। हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब। आपके रोने से वो ठीक हो जाती है? अगर ठीक हो जाती है तो फिर खूब रो, लेकिन अगर आपके रोने से वो ठीक नहीं होती है तो ज्ञानी बुद्धि बनाओ, ज्ञान युक्त। हर आत्मा का अपना पाठ है, उसके अपने हिसाब किताब है। मेरे रोने से वो ठीक होने वाला नहीं है। हाँ, आप उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, आप उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। आप शक्तिहीन क्यों अपने आप को प्रदर्शित करते हैं? शक्तिहीन नहीं बनो, ठीक है? ज्ञान दो उसको, स्नेह दो, गुड वाइब्रेशंस दो, ये सब।
अधिकतर ये पूछ रही हैं कुछ पर्चियां कि अभी हम अमृत वेला घर में नहीं कर पाते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, क्योंकि घर में सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन अच्छे संपर्क में हैं। लेकिन हम जब सेंटर पर आ जाएंगे, वहां के वातावरण में हम कर लेंगे, जैसे यहाँ कर लेते हैं, तो फिर हमें सेंटर पर रहने की छुट्टी दी जाए कि हम सेंटर पर रह के बिल्कुल सारी बातें फॉलो कर लेंगे? अभी हम किसी के हाथ का भोजन भी खा लेते हैं बिना लहसुन प्याज का, और बाहर भी खा लेते हैं, लेकिन जब सेंटर पर आ ही जाएंगे तो उस वातावरण में सब ठीक हो जाएगा। वो सांत्वना दे रहे हैं आपको।
नहीं, पहले से ही अपने आप को रेडी रखना होता है, पहले से सब नियमों की धारणा और पालना करनी होती है। सेंटर पे रह के आप कर लेंगे, कौन सी गारंटी है? अगर आपको वहां पर संगठन ऐसा मिल गया जो अलबेला और आलस्य वाला है, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए पहले से अपनी धारणा बनाओ, धारणा बना के फिर जाएंगे तो। हाँ, कोई अमृत वेला नहीं उठते हो वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन भोजन की तो बड़ी बात है। अमृत वेला आप वहां संगठन में उठ के कर सकते हैं, राइट है, लेकिन जब आपके घर वाले संपर्क संबंध में हैं, आपको रोक तो नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो वो कारण तो ढूंढो। हो सकता है आलस्य हो सकता है अलबेलापन हो। अगर अलबेलेपन और आलस्य का रिकॉर्ड है तो वो तो सेंटर पर भी प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है? बाकी जिन बहनों की बातें हैं वो अपनी टीचर्स से बात करो तो आपको ठीक दिशा निर्देश मिलेगा।
मधुबन से जाने के बाद ऐसा नशा क्यों नहीं रहता जो यहाँ नशा चढ़ता है? मुझे तो लगता है कि जो यहाँ कह रहे हैं हम सेंटर पर रहने को तैयार हैं, वो भी शमशानी वैराग तो नहीं है कहीं, यहीं का नशा हो। तो ऐसा नशा क्यों नहीं रहता? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, धीरे धीरे नशा कम होने लगता है, एक ये बात। दूसरी ये बात कि कोई भी, कई बार सामने ऐसी बातें, सिचुएशन या क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर में हम झूठ भी नहीं बोल सकते, और सत्य भी नहीं बता सकते कि अगले को बुरा लग जाएगा, फंस जाते हैं बीच में, क्या करें।
बड़ों के द्वारा कहलवा दो ना, आप बड़ों को बता दो ये सिचुएशन है, अब इसको कैसे डील करें। और अगर सत्य बात को आप मधुर शब्दों में कह देंगे तो कोई हर्जा भी नहीं है, झूठ नहीं बोलो, लेकिन सच बात को जहां बताना है वहां पर रिस्पेक्टफुली अच्छे शब्दों में, मधुर शब्दों में बताना चाहिए।
दीदी जी, प्रैक्टिकल बात है कि जब जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उसमें कैसे योग किया जाता है, उसमें सारे दिन के पुरुषार्थ स्वमान उसी पर अभ्यास करना है, या वो 3 मिनट 1 मिनट में क्या सोचें, क्या योग करें, कैसे करें, तो वो प्लीज प्रैक्टिकल बात बताइए, डायरेक्शन दीजिए।
कोई भी करो स्टेज, चाहे देही अभिमानी करो, चाहे बाबा को प्यार से याद करो, चाहे अशरीरियों के बैठो, चाहे 5 स्वरूपों का करो, कुछ भी करो। कोई इसके लिए स्ट्रिक्ट ये नहीं कि इस समय आपको यही करना है, केवल आपको अपने मन के संकल्पों को स्टॉप करके कोई भी एक एक्सरसाइज ले लो, उसका अभ्यास कर सकते हैं। कोई वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि यही करना है, कुछ भी करो। हाँ, योग करो,
स्वमान,
साइलेंस में रहो,
आत्मिक स्मृति, मस्तक मणि समझना, खुद भी थोड़ा अभ्यास उन्होंने लिखा है। मैं जब योग करती हूँ तो आंखों से आंसू तो बहुत आते हैं, लेकिन योग अच्छा नहीं लगती, मतलब अच्छा योग हो जाए ऐसा नहीं है, मतलब उत्तम अवस्था नहीं।
आंसू आना कोई अच्छे योग की निशानी नहीं है, आंसू आपके आंख के कारण भी आ सकते हैं, आंख में हवा लगती है तो भी आंसू आ सकते हैं, परंतु अटेंशन देना है याद की यात्रा मेरी अच्छी हो, अटेंशन उस पर, दिल से बाबा के प्यार के आंसू आए वो अलग चीज है, लेकिन सिर्फ आंसू आ रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा को प्यार से याद करो, लगन से याद करो।
हम भरपूर हो रहे हैं, सबको देने के लायक बन गए हैं, तो ये कैसे पता लगे? संपन्न स्थिति हो रही है, विकर्म विनाश हो रहे हैं, हमारा स्टॉक फुल हो गया, हम देने के लायक हो गए, कैसे मालूम पड़ेगा, क्या निशानियां
हैं? देखिए, विकर्म विनाश हो रहे हैं, आपको हल्कापन लगेगा, लाइटनेस रहेगी, खुशी रहेगी, योग इजी लगेगा, बाबा से प्राप्ति का अनुभव होगा, संतुष्टता होगी, ये सब चीजें आपको नजर आएंगी। और अगर योग नहीं लगता है तो उसको सीरियस लो, क्योंकि योग का न लगना एक प्रकार की सजा है। तो कुछ भी करो, अपने योग के सब्जेक्ट को ठीक करो। कभी बाबा को सर्व संबंधों से याद करो, कभी किस रूप से करो, कभी किस रूप से करो, करो। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहती हूं, आप सब कन्याएं यहां पर भट्टी में आए हो, भट्टी में आए हो?
अभी कोई भी पर्ची लेके ना आए, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी बहनें ना नीचे कुछ कुछ पर्ची लिखने में व्यस्त हैं, दीदी जो बता रहे हैं वो सुन नहीं रही हैं, पर्ची लिखने में, एक दूसरे को उंगली लगा रही हैं उसको पकड़ाने में, फिर इधर भेजने में, तो प्लीज अभी और कोई स्लिप लेके ना आए, जो दीदी समझा रहे हैं वो ध्यान से चौकन्ने होकर सुने, कोई भी पर्ची लेकर स्टेज पर ना चढ़े। जो आएंगे मुझे समझ में आएगा कि शायद उसको हिंदी नहीं आती है तो उसको समझ नहीं आई बात, तो इसीलिए कोई भी स्लिप लेकर अब स्टेज पर ना आए प्लीज. जो दीदी समझा रहे हैं वही सुने, फिर हम योग करेंगे अभी.
तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग सब आए हो भट्टी में, भट्टी में आए हो आप. शिव शक्तियां कुमारियां, आपकी शक्ति किस में है? आपकी शक्ति सिंप्लिसिटी में है. आप जितने सिंपल रहोगे उतने शक्तिशाली बनोगे. मैंने कल भी देखा और आज भी देखा कुछ कन्याएं लिपस्टिक लगा के आई हुई हैं, नहीं क्लास में लिपस्टिक किसको दिखाना चाहते हो? हम लोगों को ट्रेनिंग में हमारे टीचर्स ने कहा कि आप लोगों को ऐसे रखना है, साड़ी में फॉल नहीं लगानी, पल्लू ऐसे रखना है, सिंपल रहना है. जब आपने बाबा को पसंद कर लिया और बाबा ने आपको पसंद कर लिया, अब आपने अपने आप को किसको पसंद कराना है? समझ आई बात? अब और किसको पसंद कराना है आपने? इसलिए काइंडली बी सिंपल. कोई जरूरत नहीं, आप लोग जॉब पर भी जाते हो, नौकरी पर भी जाते हो, बी सिंपल. आज जितना सिंपल होकर के आप जाएंगे आपकी सेफ्टी है. ये तो खामखा नजर जाएगी ना औरों की. क्या जरूरत है? जरूरत भी क्या है, आवश्यकता नहीं है. ठीक है, मम्मा ने लिपस्टिक लगाई, दादी ने लगाई, जानकी दादी ने लगाई, तो मैं क्यों लगाती हूं? इतना ही देखो बस. ठीक नहीं है?
आपने भी नहीं लगाई जब आप पढ़ाने जाते थे, जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते थे?
हाँ, हम कॉलेज भी जाते थे, पढ़ाने भी जाते थे, पढ़ने भी जाते थे, सब काम करते थे. सिंपल, सिंप्लिसिटी में शक्ति है. सिंपल.
दीदी की बात से मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ. के ट्रेनिंग करने के बाद जैसे भट्टी करते हैं ना, 2 साल वाली टीचर, 3 साल वाली टीचर, तो ऐसे हम ना ये नहीं चीर नहीं निकालते थे. सेंटर पर रहते हुए 2.5 साल हो गए थे मुझे एग्जैक्ट याद है, और पीछे ऐसे सीधा सीधा बाल करके और चोटी करने लग गए, तेल भी लगाने लग गए, और बाल जितने अब हैं इससे ज्यादा डबल हैवी थे, मोटी चोटी होती थी. तो दीदी ने क्लास कराई कि मम्मा और सब दादियां सब देखो ऐसे बीच में मांग निकालते हैं, और ये एक सिंपल सी बात कही थी और वो बड़ी अच्छी लगी थी कि देखो सीधा रास्ता मिला है, सीधे रास्ते की निशानी, ऐसे सीधी मांग निकालनी है, इधर और इधर टेढ़ी नहीं निकालनी, इसको बंद नहीं करना. अच्छा, मैं निकालती नहीं थी लेकिन ये इतनी जची बात. फिर मैं अलग से दीदी के पीछे पीछे गई. मैंने पीछे ये बात है मेडिटेशन हॉल ऊपर पांडव भवन की, जो ऊपर मेडिटेशन हॉल है. तो मैंने दीदी से, बारिश का दिन था, बहुत बारिश थी, और मैंने कहा दीदी इतने आगे बड़े बड़े भारी भारी बाल हैं, और जब मैं ऐसे चीर निकालती हूँ ना, मांग निकालती हूँ, तो वो अभी कभी कोशिश करूंगी तो वो ऐसे एक तरफ से उठ जाते हैं, ऐसे पहाड़ सा उठ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता देखने में. दीदी ने मुझे घूरा, उस वक्त घूरने जैसा ही लगा था। दीदी कहते अच्छा लगे या ना लगे, किसको दिखाना है अच्छा लगा के? इतनी अच्छी लगी ये बात, दिल को लगी, अच्छा लगे या ना लगे, अगर ऊपर बन भी जाता है थोड़ा सा ऐसे पहाड़ सा, तो किसको दिखाना है? नहीं लगे तो ना सही, अच्छा दिखाना किसको है? बात तो सही थी कि जब डिसाइड कर लिया, 2.5 साल से सेंटर पर रह भी रही हूँ, पढ़ाई भी पूरी हो चुकी, लक्ष्य भी यही है, तो किसको दिखाना है? मैं आ गई और आंखों से आंसू बहते जाए, शीशे के आगे खड़ी होके चीर निकालती जाऊं, पानी लगा लगा के उसको जमा जमा के आधा घंटा मैंने मांग निकालने की कोशिश की, और उसके बाद कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया। अब तो सिर धो के निकलो अपने आप मांग निकलती है, बरसों से सीधा रास्ता ऐसा मिला कि वो कभी टेढ़ा हुआ ही नहीं, मिटा ही नहीं, वो अपने आप ही सेट हो गया। जब मन में इच्छा है कि मेरे साजन को मैं वैसी अच्छी लगती हूँ जैसा मुझे बड़ों ने बताया, साड़ी पहनना मुश्किल था, पहली बार तो सूट पहनना भी मुश्किल था, क्योंकि जब ज्ञान में आई तब तो फ्रॉक पहनती थी, जीन्स पैंट ये पहनते थे, तो सूट पहनना, सलवार पहनना, फिर साड़ी बांधना, सब कुछ मुश्किल लगा था। लेकिन जब ठान लिया कि जिसको पसंद है उसके पसंद की ड्रेस पहननी है तो पहननी है, नो ऑप्शन। ये जब ऑप्शंस बना के रखते हैं ना, ये नहीं ये कर लेंगे, ये नहीं ये कर लेंगे, प्रॉब्लम उनको आती है। जिन्होंने सारे ऑप्शंस कट कर दिए उनके सामने कोई समस्या नहीं है। ये सब बातें बहुत छोटी छोटी है, नींद आती है, प्याज लहसुन खाना पड़ता है, पार्टी में जाएं तो क्या करें, मम्मी के हाथ का खाना पड़ता है, वो ब्राह्मण नहीं है, ये सब वो बातें हैं जो अपनी कमजोरी को दर्शाती हैं। आपने पक्का कर लिया तो आप पक्के रहेंगे ही, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। ठीक है दीदी जी, अभी योग करेंगे। तो आप इतना अच्छा योग करें कि दादी आ जाए। किसी ने, कन्या ने ये भी लिखा है कि हमें ऐसा योग कराओ जो बारिश आ जाए, बारिश अपने आप आ जाएगी, दादी आ जाए ऐसा योग करें।